તારીખ 24/8/1994 શ્રી કાહન ગુરુ સ્વાધ્યાય હોલના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગે સમયસાર શાસ્ત્ર ઉપર પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 204
स्वानुभूति रूप जो अवस्था है, जो समय सार को नमन करने वाली है, उसमें समय सार का प्रकाशन है, प्रकट होता है आत्मा उसमें। समय सार कैसे प्रकट होता है भगवान आत्मा, स्वानुभूति से प्रकट होता है। द्रव्य तो मंगल है, लेकिन ये स्वानुभूति भी
मंगल है।
मंगल है, मंगल कहो या पवित्र कहो, गुरुदेव अर्थ करते थे, मंग मैंने पवित्रता, ल मैंने लाती। पवित्रता को लाने वाले की अवस्था को मंगल अवस्था स्वानुभूति कहने में आती है। भगवान अमृत चंद्र आचार्य देव ने इस मान परमागम का उद्घाटन प्रारंभ स्वानुभूति से किया है, और यहां से आत्मा भी प्रकट हो गया। वैसे आत्मा तो अनादि अनंत है, अनादि से था ही, लेकिन स्वानुभूति बिना था वो बात स्थान नहीं पामते, वो बात स्थान नहीं पामते। इसलिए नमः समय साराय कह कह करके समय सार प्रति झुकते हैं, वो समय सार स्वानुभूति में प्रकाशमान होता है। कैसा है समस्या समय सार, चित स्वभाव आय, चैतन्य स्वभाव जिसमें भरा है, चैतन्य चेतना स्वभाव है, अनंत चेतना स्वभाव से जो भरा हुआ है, ऐसा स्वभाववान को हम नमस्कार करते हैं। चित स्वभावाय भावाय, भावाय भी साथ में लिया है, अनंत अनंत शक्तियों रूप जो भाव है, भाव नाम का गुण भी है, और सभी शक्ति को भी भाव कह सकते हैं, द्रव्य को भी भाव कह सकते हैं, गुण को भी भाव कह सकते हैं, पर्याय को भी भाव कह सकते हैं। तो जिसको नमस्कार करने में आता है संस्कृत भाषा में, उसको चतुर्थ विभक्ति कहते हैं। चतुर्थ विभक्ति गुरुदेवाय, स्वभावाय, चित स्वभावाय, भावाय, ये सब चतुर्थ विभक्ति का पद है। उनको नमस्कार करते हैं, अनंत भाव रूप जो स्वभाव है, आत्मा है, उनको नमस्कार करते हैं। और जब ये पूर्ण प्रकट होता है आत्मा, तो सर्व मैंने जगत में जितने भी पदार्थ हैं उनके अनंत गुण अनंत पर्याय सहित सबको जान लेता है, इसका प्रकाश करता है, उसकी मौजूदगी को जाहिर करता है। ये श्लोक का मांगलिक कलश का सीधा सादा अर्थ कथन है। ये बड़ा भक्ति है, सिर्फ भक्ति ही नहीं है किंतु परा भक्ति है, चरम सीमा की भक्ति है। क्या उसको ज्ञान भी कहते हैं, उसको दर्शन भी कहते हैं, लीनता होने से उसको आचरण भी कहते हैं, और इसको भक्ति भी कहने में आती है। परा मैंने उत्कृष्ट, परम, इसलिए उनको पराभक्ति कहते हैं कि वो अपने परमात्म तत्व से भेदभाव नहीं रखते, भाव से अभेदता को वो साधती है, इसलिए उसको पराभक्ति कहने में आती है। परम भक्ति को, चरम सीमा की भक्ति को, उत्कृष्ट में परमोत्कृष्ट भक्ति को, जो अवस्था अपने परमात्म तत्व के प्रति उतनी आकर्षित होती है, अनंत गुण संपन्न है ना भगवान परमात्मा, तो उतनी आकर्षित होती है, उतनी आकर्षित होती है कि वो अपना भान भूलती है। क्या
भान भूल जावे,
वो अपना भान भूल जावे, मैं अवस्था हूं ऐसा भूल करके मैं खुद ही परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करती है। अवस्था स्वयं अपने को अवस्था रूप में अनुभव नहीं करती, अवस्था द्रव्य रूप में अपना अनुभव करती है और स्वद्रव्याकार हो जाती है, स्वद्रव्याकार हो जाती है। तो फिर अवस्था और अवस्थावान जिसको नमन करती है उसमें भेदभाव नहीं रहता। इसलिए स्वानुभव से जो संपन्न है ऐसे सभी धर्मात्मा स्वानुभव में द्रव पर्याय का भेद का अनुभव नहीं करते हैं, मालूम नहीं पड़ता। देखो ये ग्रंथ का रचने वाला जो कुंदकुंद आचार्य भगवान है, इसका प्रतिकृति रूप जो फोटो है उसका भी आज उद्घाटन हुआ है। इस समय सार को जिसने समझाया, यानी सारे समाज में, दिगंबर समाज में भी समय सार को इतना कोई पहचानते नहीं थे, एक नई क्रांति जो ले आए ऐसे अपने गुरुदेव, उसका भी फोटो का अनावरण आज हुआ है। और पूज्य माता जी जिसके कारण से, जिसके निमित्त से सारे समाज को गुरुदेव का तत्व का लाभ मिला, वास्तव में जो लाभ मिला है वो लाभ उसी कारण से मिला है। अगर गुरुदेव की सभा में ऐसे महान धर्मात्मा नहीं होते तो शायद इतना तत्व समाज को मिलता भी नहीं। जैसे तीर्थंकर की सभा में गणधर तीर्थंकर के उपदेश को झेलने वाले होते हैं तो दिव्य ध्वनि छूटती है, वरना दिव्य ध्वनि नहीं छूटती। भगवान की इच्छा अनिच्छा का सवाल नहीं इसमें, लेकिन कुदरत की यह व्यवस्था है कि उत्कृष्ट उपदेशक होता है तो उसका श्रोता भी उत्कृष्ट सभा में मौजूद होता ही है। गुरुदेव का तो सीधा उपकार है, लेकिन माता जी का भी इतना ही उपकार है, ऐसा समझना चाहिए। उनका भी फोटो का अनावरण हुआ है और भी धर्मात्माओं का आश्रमों को दर्शन हुआ है। तो ये अपने जो श्लोक है उसका भी ग्रंथ में से मैं अर्थ पढ़ता हूँ। हाँ, वो भावी तीर्थंकर और भावी गणधर है, भावी तीर्थंकर और भावी गणधर है। भावी नहीं से अपन काल को बात कर दें, तुझे माता जी की भाषा में क्या कहते हैं कि काल को बात कर दो, काल को अपने लक्ष्य में से निकाल दो तो तीर्थंकर और गणधर के रूप में दर्शन होगा। अभी तीर्थंकर और गणधर के रूप में दर्शन हो सकता है, काल को बात करना चाहिए। और ये हो सकता है ज्ञान में, ये हो सकता है। जैसे राजा के वहां पुत्र जन्म होता है तो क्या कहते हैं, देखो हमारे यहाँ राजा का जन्म हुआ, उसको राजा ही बोलते हैं, कुंवर नहीं बोलते हैं, राजा बोलते हैं। इस तरह से लेना चाहिए। हाँ, अनन्य प्रेम, अनन्य रुचि पैदा होती है जब स्वरूप का निश्चय होता है, स्वरूप का भाव भाषण होता है। गुण की रुचि तो थी, इसको तो गुण की रुचि के कारण से तो अनुभवांश से, वेदक अंश से, लक्षण से लक्ष्य का पता चला। गुण की रुचि थी और ज्ञान में भाषण हुआ, अनंत गुणों का जो खजाना था, भंडार था, ऐसा परम तत्व का भाव भाषण हुआ तो इतनी अनन्य रुचि पैदा हो जाती है, उतने अनन्य भाव से पैदा होती है कि फिर पर्याय और द्रव्य में, भाव में भेदभाव रहता नहीं। जैसा पतंगा अपनी जात को दीपक को समर्पित करते हैं, वैसे पर्याय भी अपना सर्वस्व द्रव्य को समर्पित कर देती है। ऐसा अनन्य गुण का प्रेम पर्याय को पर्याय में पैदा होता है। ये गुण का प्रेम है,
उसी को प्रेम भक्ति कहते हैं।
उसी को प्रेम भक्ति भी कहते हैं, उसको पराभक्ति भी कहते हैं। उसके सिवा तो कोरा ज्ञान से तो कुछ काम होने वाला नहीं है। रुचि के बिना उपयोग अंदर नहीं जाता, आता है वचनामृत में, पूज्य महेश्वरी के वचनामृत ग्रंथ में तो पहले रुचि होती है, फिर उपयोग का अंदर वलन होता है। रुचि हुए बिना कोई कोरा ज्ञान को अंदर में लेने का प्रयास करेगा, उपयोग अंदर में जाएगा नहीं, झुकेगा ही नहीं। उसको खींचने वाली तो रुचि होती है। श्लोकार्थ नमः समय साराय, समय अर्थात जीव नाम का पदार्थ, उसमें जो सार, क्योंकि जीव नाम का पदार्थ में सारभूत है वो मूल तत्व है, क्योंकि अनादि से अवस्था मलिन हो रही है, तो वो सार नहीं है, वो असार है। उसको यहाँ भाव कर्म बोले हैं। तो संसार माने द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्मा। द्रव कर्म भाव कर्म तो परमाणु का संयोग है आत्मा को अनादि से, वो संयोग को भी यह नमस्कार नहीं करते, और भाव कर्म रूप मलिन रागादि भाव है उसको भी नमस्कार नहीं करते, क्योंकि खुद मलिन है और आत्मा परम पवित्र है। तो उसके रहित जो शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसको मेरा नमस्कार हो। अपना स्वरूप को ही अपन नमस्कार करते हैं, क्या स्वयं समय स्वयं को नमस्कार करते हैं, और यही भगवान की आज्ञा है, यही श्री गुरु की आज्ञा है। कैसा है वो समयसार, कैसा है कि शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। भावाय का वो अर्थ किया है, ये यहाँ जो अर्थघटन किया है वो दार्शनिक पद्धति से अर्थघटन किया है, कि एक एक शब्द है वो अन्य दर्शन में जो भी विरुद्ध मान्यता है, अन्यथा मान्यता है, उसका निषेध करके किया है, वो उसका दार्शनिक अर्थघटन कहते हैं। अन्य दर्शनों के मुकाबला करना, वह शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है, उसका अस्तित्व शुद्ध है, उसकी मौजूदगी शुद्ध है। इस विशेषण से, इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों के मत का खंडन हुआ। जो नास्तिकवादी है तो कहते कि अस्ति को स्थापन किया, यहाँ पहले किसको स्थापन किया, अस्ति को है, फिर है तो उसमें क्या क्या है वो बाद में कहेंगे, लेकिन पहले है उसको तो स्थापित करो। क्योंकि जगत में ऐसा भी अभिप्राय वाले संप्रदाय चलते हैं कि जो आत्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। शुद्ध अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व का अर्थ वो भी है कि किसी के कारण से इसका अस्तित्व नहीं है, किसी के मदद से नहीं है, किसी के निमित्त से नहीं है, स्वतंत्र अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बोलते हैं उसको। कितना कोई की मदद नहीं है, कोई आलंबन की जरूर नहीं, किसी अपेक्षा की जरूर नहीं, निरालंब निरपेक्ष ही आती मौजूदगी जो धारण करता है, ऐसा अस्तित्व को शुद्ध अस्तित्व कहने में आता है। ऐसा कहने से नास्तिकवादी मत का खंडन हो गया। और कैसा है कि चित स्वभाव आय, ये मुख्य गुण है, चैतन्य है, वो आत्मा का मुख्य गुण है कि जिसका स्वभाव चेतना गुण रूप है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाला न्यायिक मत का निषेध हुआ। न्यायिक में सर्वथा गुण गुणी को गुण का संयोग होता है तब ये गुणवान होता है, ऐसी मान्यता है वहाँ। वो वेदांत का एक अभिप्राय है, वेदांत का विभिन्न अभिप्रायों में से ये भी एक अभिप्राय है कि आत्मा को चेतना गुण मिलता है तो आत्मा चैतन्य होता है, वो सर्वथा भेद मानता है। जबकि गुण और गुणी अभेद होता है, गुण और गुणी तो अभेद होता है, इसलिए चैतन्य स्वभाव और आत्मा में हम कोई भेद समझते नहीं है। इसलिए यह न्यायोग का निषेध किया। और कैसा है कि स्वानुभूत्या चकासते, अपनी ही अनुभव रूप क्रिया से प्रकाशता है, अर्थात अपने आप को अपने से हुई जानता है और प्रकट करता है। उसको प्रकट करने के लिए दूसरे की जरूरत नहीं है, हमारी मौजूदगी को प्रकट रूप में अनुभव करने के लिए हमको दूसरे के किसी की जरूरत नहीं है। हम अपना अनुभव करें तो अपने अपनी सत्ता का उसमें अनुभव होता है, अपनी मौजूदगी अपने को अनुभव में आती है। इस तरह से वो अपने आप को प्रकट करने वाला है। इस विशेषण से आत्मा को और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानने वाले जैमिनीय भट्ट प्रभाकर भेद वाला मीमांसकों का मत का निषेध हुआ। तो मीमांसक दो प्रकार के हैं वेदांत में, इसमें एक जैमिनीय भट्ट प्रभाकर भेद वाला है, वो आत्मा को और ज्ञान को सर्वथा परोक्ष मानते हैं, जबकि आत्मा प्रत्यक्ष है, सहज प्रत्यक्ष है, अनंत प्रत्यक्ष है, और इसका अनुभव भी अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष ही होता है, इसलिए परोक्षपना का निषेध किया। और ज्ञान अन्य ज्ञान से जान सकते हैं, ज्ञान अन्य ज्ञान द्वारा ही जान सकते हैं, स्वयं अपने आप को नहीं जानता है, ऐसा मानने वाला न्यायिक मत का भी निषेध हुआ। वो भी न्यायिक में एक प्रकार है, उस वेदांत का ही भेद है। तो वो दूसरा ज्ञान उसको जाने अपने आप को नहीं जानता, दर्शन अपने को अपने को नहीं जानता है, ज्ञान दूसरे को जानता है अपने को नहीं जानता, ऐसा कोई उसमें अभिप्राय चला है। तो कहनी दूसरा ज्ञान से तो ज्ञान जाने वो भी नहीं, और अपनी एक ज्ञान की पर्याय को दूसरा ज्ञान में दूसरा होने वाली ज्ञान के पर्याय को जाने, ऐसा भी नहीं। थोड़ा सूक्ष्म लेते हैं उसमें कि हमको ज्ञान हुआ, स्वयं का हुआ या किसी पर पदार्थ का प्रतिबिंब आकर के पर का ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान को जानने वाला इसके बाद होने वाली पर्याय जानेगी, ऐसा नहीं है। जो पर्याय स्वपर प्रकाशक है वो स्वयं उसी वक्त अपने को जानती है, दूसरा ज्ञान उसको जाने वो भी नहीं, तो वो व्यतीत हो जाए पर्याय, फिर दूसरा ज्ञान उत्पन्न पर्याय होवे, फिर वो पहले वाले को जान ले कि मुझे ऐसा ज्ञान हुआ था, उसको तो स्मरण कहते हैं, स्मृति ज्ञान कहते हैं। तो स्मृति ज्ञान की यहाँ बात नहीं है, या तो वो ज्ञान स्वयं उसी वक्त अपने आप को जानता है। और कैसा है कि सर्व भावांतर छिदे, अपने से अन्य सर्व जीव अजीव चराचर पदार्थ को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषता सहित एक ही समय में जानने वाला है, उतनी ताकत है समय सार में, कितनी शक्ति है कि एक समय में सर्व जीव अजीव उनके तीन काल की पर्याय, उनके सब विशेषण विशेषताएं गुण भेद धर्म भेद सबको एक समय में जान लेवे, ऐसा जानने वाला समय सार है। हाँ, अनंता को जान ले, जितना है उतना तो जाने, इससे भी अनंता हो तो जाने, इससे भी अनंता हो तो जाने, इससे भी अनंता हो तो जाने। अभी जो है वो तो एक केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय केवल ज्ञान रूप आकाश में एक परमाणु जितना छोटा है उतनी बड़ी पर्याय है। केवल ज्ञान की पर्याय कितनी बड़ी है, पर वो पर्याय कहाँ है? हमारे आत्मा में भी है और आपके आत्मा में भी है। हमारे तुम्हारे सभी के आत्मा में ऐसी ताकत है। इसीलिए किसी का अनादर करना, क्योंकि ऐसे सब भगवान आत्मा है। गुरुदेव सबको भगवान कहकर के पुकारते थे, सबको भगवान कहते थे। वो आने का उनको ये जगह इतना बड़ा आदर मेरा, मैं तो अपने आप को कसाई वाला मानता था, मैं तो अपने आप को पामर मानता था। नहीं नहीं नहीं, हम कहते हैं वो कुछ पेंसिल ने लिया है, हम तो सबको भगवान ही सीधी जानते हैं। कोई अपने आप को कैसा भी मान ले, हम नहीं मानते। अरे सिरच्छेद करने वाला आवे तो भी भगवान है क्या? माथा को काटने वाला आवे तो हमारे लिए तो भगवान ही भगवान है। इसका कसाई छूट जाएगा, भगवान सुनते ही उसका कसाई। अरे मुझे वो कसाई रहित कहता है तो मेरा कसाई कहाँ, मैं क्यों करूँ कसाई? छूट जाएगा, उसको नहीं रहने वाला। देखिए ना, जंगल में आचार्य महाराज निर्ग्रंथ मुनिराज दिगंबर मुनि बैठते हैं तो कसाई वाले प्राणी आते हैं, बाघ चित्ता सिंह हाथी सर्प सब बैठ जाते हैं, सब इसके पास शांत होकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक कसाई की मूर्ति को देखते हैं तो उनको भी ऐसा भाव हो जाता है। जैसे किसी को दुखी देख के हमको दुख होता है, तो किसी को शांत देख करके शांति आ जाती है। तो आत्मा का स्वभाव ऐसा है, वेदक स्वभाव ही ऐसा है, वो उसका वेदन को पकड़ता है। वो हाँ सब भूल जाता है आपस में, क्योंकि उन लोगों ने सुना कि हम दोनों भगवान है। कोई गाय भी नहीं और कोई सिंह भी नहीं है, दोनों भगवान है, ऐसी बात है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का भाव मानने वाला मीमांसक आदि का निराकरण हुआ। इस प्रकार से विशेषणों में गुणों से शुद्ध आत्मा ही इष्ट देव है ऐसा सिद्ध करके आचार्य महाराज ने श्री गुरु ने नमस्कार किया है।
देवादिदेव सिद्धि मंत्र